यह खबर जितनी बीजेपी के लिए जरूरी है उससे कहीं ज्यादा यह खबर शिवसेना के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के एक सहयोगी दल ने वह ऐलान कर दिया है कि वह उस सीट से चुनाव लड़ेगी जिस सीट पर शिवसेना ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, हम बात कर रहे हैं रामदास अठावले की जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि खबर क्या है। सोनू जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप खबर बता दीजिए कि दरअसल हम किस पर चर्चा करने वाले हैं।
देखिए, रामदास अठावले की जो पार्टी है, रामदास अठावले जो खुद राज्यसभा सांसद है और मंत्री है, उनका ये कहना है कि वो बीजेपी, जहाँ पर शिवसेना के एक सांसद है, वहाँ से वो मुंबई में चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है और यहाँ पर शिवसेना को हराने के लिए बीजेपी रामदास अठावले का इस्तेमाल कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर सब सही रहा तो रामदास अठावले को इसका फायदा हो जाएगा। मुझे फिलहाल जो सांसद है उनका नाम याद नहीं आ रहा है, राहुल शिवालय, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और शिवसेना की तरफ से कॉरपोरेटर रह चुके हैं कई सालों के लिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राहुल शिवालय की अगर बात करूँ तो वो मोदी लहर में जीत कर आए थे, तो अब अगर वहां पर कोई किसी और को खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है, और उसको बीजेपी का समर्थन होगा, तो मुझे लगता है कि वो जीत तो जरूर मिलेगी। शिवसेना के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, शिवसेना के लिए उसके ही घर पर हमला करने जैसा है। कुछ जो प्रोटेक्टेड सीट है शिवसेना की, वहां पर अगर इस तरह से बीजेपी अगर किसी कैंडिडेट को उतार रही है और उसे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो दोनों के बीच में जो खटास है वो और बढ़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं रामदास अठावले की, तो जिस इलाके से लड़ने की बात कही जा रही है वहां पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा करके अगर देखा जाए तो एक तो मराठा बैकग्राउंड के लोग हैं, मराठी लोग हैं, और इसके अलावा जो SC ST कम्युनिटी के हैं वो है,
तो भारी तादाद में वहाँ पर दलित बस्ती है।
जी हाँ, तो यही कारण है कि वहाँ से रामदास अठावले को खड़ा करने की बात कही जा रही है और खुद रामदास अठावले की पार्टी ने भी इसे कंफर्म किया है। तो एक बड़ा पैमाना आ जाता है वहाँ पर, जहाँ इस जगह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रामदास अठावले को यहाँ पर खड़ा करके कहीं ना कहीं बीजेपी शिवसेना की सीट पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से शिवसेना ने भी कहा कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, तो इसका सीधा सीधा फायदा कुछ जगह पर महाराष्ट्र में खासतौर पर RPI को होगी। हो सकता है कि RPI जो अब तक खाता नहीं खोल पाई है, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ, तो मुझे लगता है कि ये रामदास अठावले की पार्टी के लिए एक बड़ा होने का बहुत अच्छा मौका है। और बीजेपी समर्थन देगी तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जहां जहां रामदास अठावले की पार्टी लड़ेगी उसका फायदा होगा। और हो सकता है कि आज उनके पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है 2019 में अगर बीजेपी की छत्र छाया में रहे तो हो सकता है कि उनके 2 से 3 सांसद लोकसभा में जाए।
सुरु जी, एक बड़ी रोचक बात यहाँ पर आप देखिए कि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र और देश भर में बीजेपी और शिवसेना साथ साथ रही। रामदास अठावले की पार्टी अवसरवादी पार्टी रही, कभी कांग्रेस के साथ रही तो कभी बीजेपी के साथ रही। अब शिवसेना बीजेपी के झगड़े में देखिए रामदास अठावले को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है।
जी हाँ, देखिए रामदास अठावले को फायदा होगा ही। देखिए वो एक देखा जाए तो पानी की तरह है, जहाँ पर उन्हें डाल दो वो उनके उसकी तरह हो जाते हैं। पहले से कांग्रेस के साथ थे, उनके साथ सरकार में मंत्री भी रहे, इसके अलावा उसके बाद देखा जाए तो अब बीजेपी के भी कार्यकाल में मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि रामदास अठावले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सरकार है, वो सत्ता में रहना चाहते हैं। यही कारण है कि जब कांग्रेस NCP यानी कि UPA की सरकार थी तभी भी वो सत्ता में थे, और आज NDA की सरकार है तो भी वो सत्ता में है, तो यानी कि दोनों तरफ से उनका फायदा हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में अगर खास तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ शिवसेना है और जहाँ जहाँ शिवसेना के जगह पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे और रामदास अठावले की पार्टी के कैंडिडेट्स वहाँ पर उतारे, तो मुझे लगता है रामदास अठावले की पार्टी को फायदा होगा और इस फायदे से रामदास अठावले के लगभग 2 से 3 सांसद चुनकर तो आ सकते हैं। तो ये रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी रामदास अठावले खोना चाहेंगे और वो खुद चुनकर एक बार फिर से लोकसभा में जाने की सोच रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल बाकी है, लेकिन उन्हें पता है कि लोकसभा में की क्या ताकत होती है, तो मुझे लगता है वो लोकसभा जाना चाहेंगे और लोकसभा के साथ साथ अपने जो कुछ और भी 2-3 कैंडिडेट होंगे उनको भी लेकर जाने की पूरी प्लानिंग है। और ये एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर किसी एक छोटी पार्टी की बात करूँ, रीजनल पार्टी जो बड़ा होना चाहती है, तो मुझे लगता है उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक स्ट्रैटेजी भी है।
नरेंद्र मोदी के लिए निष्ठावान भी रही है पार्टी।
जी देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए निष्ठावान भी इसलिए क्योंकि वो दलित वोट बैंक को भी पकड़ के रखा हुआ है, सब कुछ एकदम संभाले हुए रखा हुआ है। और महाराष्ट्र में खास तौर पर अगर देखूं तो रामदास अठावले से बड़ा यहाँ पर कोई दलित नेता नहीं माना जाता। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में जो SC ST के लोग हैं उनके लिए उनकी बड़ी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी से देखिए बीजेपी को 1% नुकसान नहीं होगा। अगर वहाँ पर जहाँ पर RPI को खड़ा करते हैं शिवसेना के अपोजिट, अगर वहाँ पर RPI नहीं जीतती है तो शिवसेना भी नहीं जीतेगी, शिवसेना का वोट काटा जाएगा, शिवसेना का वोट काटा जाएगा तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को फायदा होता है, शिवसेना को नुकसान महाराष्ट्र में फिर होता ही रहेगा। पिछले कई चुनाव में हमने देखा बीजेपी लगातार बड़ी होती गई है और शिवसेना छोटी होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत इस चुनाव में उतरी है बीजेपी और खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और महाराष्ट्र में रामदास अठावले को किस तरह से पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और यही कारण है कि रामदास अठावले की पार्टी को इस बार शिवसेना के सांसदों की सीट के सामने उतारने की पूरी प्लानिंग है।
सुनिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, अगर हम 2014 के लोकसभा की बात करें या फिर इससे पहले अगर हम देखें, इसके पहले का अतीत चाहे कुछ भी रहा हो, विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे हों, और अगर महापालिका के या फिर जो अगर हम विधानसभा के चुनाव देखें तो उसके नतीजे कुछ भी रहे हों, क्योंकि हर चुनाव में हर मुद्दे अलग अलग होते हैं। पिछले अगर चुनाव की हम बात करें, 2009 के अगर चुनाव की हम बात करें, तो मुंबई में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट NCP ने जीती थी। 2014 में मोदी लहर हुआ, मोदी लहर के वजह से बीजेपी और शिवसेना ने मुंबई में यहाँ पर सीटें जीती, 3-3 सीटें मुंबई की 6 सीटों में से सबने जीता। क्या मौजूदा समय में क्या शिवसेना के पास इतना सामर्थ्य आपको नज़र आता है कि अगर इसी सीट की अगर बात करें, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट की बात करें, अगर राहुल शेवाले शिवसेना के जो दावेदार जो खड़े होंगे वो रामदास अठावले को हरा दे, रामदास अठावले जिनके साथ नरेंद्र मोदी होंगे, क्या शिवसेना इतनी सामर्थ्यवान बन चुकी है कि वह अपने अकेले दम पर एक भी सांसद यहाँ पर जितवा सकती है मुंबई में आज की परिस्थितियों में, अतीत चाहे कुछ भी रहा हो?
देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे अगर देखा जाए तो 100% ये भी नहीं लगता कि शिवसेना नहीं जीत पाएगी और ये भी नहीं लगता कि शिवसेना जीत पाएगी। आज की अगर स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना उतनी स्ट्रांग नहीं उतर पाई है अपने मुद्दों को लेकर। वहीं अगर मैं बात करूं तो हार जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो मोदी लहर है वो ख़त्म हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी भी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त कह देना ये बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि शिवसेना के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना
सीट पर कांग्रेस का भी वर्चस्व रहा है,
यही कहना है मुझे कि इससे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी कहना मुझे लगता नहीं कि मुनासिब होगा। लेकिन ये तो तय है कि कंपटीशन इस सीट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस
गायकवाड़
गायकवाड़ और काफ़ी वक्त से रहे, मुझे लगता है क्योंकि मंत्री भी रहे हैं और एक चेहरा भी रहे हैं, दलित फेस भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल शिवालय की अगर मैं बात करूँ तो राहुल शिवालय का आने वाले दिनों में जब अगर फिर से चुनाव होगा तो मुझे खुद नहीं लगता कि शिवसेना राहुल शेवाले को वहां से चुनाव लड़ाएगी। हो सकता है शिवसेना किसी और चेहरे को मौका दे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2014 में चुनाव हो रहे थे तो मनोहर जोशी उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे।
जी हाँ, तो यही मेरा कहना है कि देखिए वहां पर राहुल शिवालय फिर से लड़ेंगे ये एक सोचने वाली बात है। शिवसेना मुझे लगता है खुद राहुल शेवाले को दूसरा मौका नहीं देना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो एमपी का दबदबा रहा है जो दलित समुदाय से आया हुआ है, चाहे वो एकनाथ गायकवाड हो या चाहे कोई और। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि रामदास आठवले भी इस सीट को पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, और इस सीट पर जीत पाना रामदास आठवले के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा अगर मुंबई के किसी और इलाके की अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो एससी एसटी का वो वहाँ पर होता है। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा रामदास आठवले को ज़रूर होगा, हो सकता है कांग्रेस भी इसमें फ़ायदा उठा ले, और यही कारण है कि शिवसेना राहुल शेवाले को इस बार मौका देने में कतराती रहेगी, और शिवसेना मुझे लगता है कि राहुल शेवाले को मौका नहीं देगी, हो सकता है राहुल शेवाले को कहीं और लाए और किसी और कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप इस सीट के बारे में हम आपको बता दें, अब इस सीट का महत्व इसी बात से यहाँ पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जब भी इस सीट पर चुनाव होते हैं तो एक 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 पिछड़ी जाति वर्ग से एक उम्मीदवार को उतारा जाता है और वो वहाँ से जीत वहाँ पर दर्ज करता है। इस सीट पर देखिए भारी तादाद में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस की बात करें तो उस सीट पर वहाँ पर कांग्रेस का भी पकड़ बेहद यहाँ पर मजबूत है। इसके अलावा शिवसेना ने जो मौजूदा सांसद शिवसेना का है, बीजेपी भी नज़रें मारती जा रही है। अब ऐसे में एनडीए ने रामदास आठवले को बताया जा रहा है कि कह दिया है, उनको आश्वस्त कराया है कि आप इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मामला पूरी तरह से वहाँ पर त्रिकोणीय होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2019 में जब चुनाव होंगे तो उस सीट से विजयी कौन होता है। लेकिन बहरहाल HW न्यूज के साथ बने रहिए और हर पल चुनावी अपडेट पाते रहिए। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।